قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے تب بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بناتے اور ان کو پھر ہم اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں یہ اب مبتلا ہے، اور پیغمبر، اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کافروں سے کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ان آیات میں پہلے تو ان کے اس مطالبے کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر کتاب براہ راست نازل ہو جائے، اور وہ کتاب کسی کاغذ پر لکھی ہوئی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا مطالبہ سوائے ہٹ درمی کے کچھ اور نہیں ہے۔ اگر بالفرض ہم ان کو کتاب کاغذ پر لکھی ہوئی اتار کر بھی نازل کر دیں، ہاتھوں سے اس کو چھو کر بھی دیکھ لیں، پھر بھی یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں ایمان نہیں لانا، تو اب وہ اگر یہ ان کا مطالبہ پورا کر بھی دیا جائے تو بھی ہمارا علم ازلی یہ فرماتا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ فرمایا بلا نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اور اگر ہم نے ان پر تم پر اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کرتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہو، فلمسوہ بایدیہم، پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیں، تو لقال الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنا ہی رکھا ہے وہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ جس طرح قرآن کریم جو ایک بذات خود معجزہ ہے اس کے بارے میں بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے، بعض اوقات جادو کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات شاعری کہہ دیتے ہیں، اسی طرح اگر یہ کتاب بھی اس طرح نازل کر دی جائے تب بھی وہ اس کو صرف جادو کہیں گے۔ اور کتاب ان کے اوپر نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس براہ راست ہر ایک آدمی کے پاس کتاب اللہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کبھی کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں بھیجتا، پیغمبر بغیر کتاب کے آ جاتے ہیں لیکن کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں آتی، اور وجہ یہ ہے کہ کتاب کبھی بھی کسی انسان کی زندگی میں اصلاح کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ کوئی بھی علم و فن وہ محض کتاب کی بدولت حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی استاذ نہ ہو، کوئی معلم نہ ہو۔ تو اگر ان کے پاس، ہر ایک کے پاس ایک کتاب آ کر اتر جاتی اور اس کے کاغذ پر لکھی ہوئی اور اس کو یہ ہاتھ لگا کے بھی دیکھ لیتے تو یہ اپنے آپ کو رسول سے مستغنی سمجھتے، کتاب ہمارے پاس براہ راست آ گئی لہٰذا اب ہمیں رسول کی کوئی ضرورت نہیں، العیاذ باللہ۔ تو اس صورت میں یہ ہوتا کہ یہ سب براہ راست کتاب پڑھتے اور کتاب پڑھ کے بجائے فائدہ اٹھانے کے گمراہ ہوتے، کیونکہ رسول کو تو بھیجا ہی جاتا ہے کتاب کی تشریح کے لیے۔ جیسے کہ اگر کوئی کسی علم و فن کی کتاب ہو، میڈیکل سائنس کی کتاب ہے، वो एक आम आदमी के सामने आ जाए और वो उसको पढ़ के डॉक्टर बनना चाहे तो नहीं बन सकता जब तक के किसी उस्ताद से तरबियत हासिल न करे। तो अल्लाह ताला की हिकमत यह है कि वो किताब तन्हा नाजिल नहीं करता बल्कि उसके साथ मुअल्लिम के तौर पर रसूल भेजता है। तो इसलिए ये मुतालबा एक तरफ तो ऐसा है कि ये उसके पूरा हो जाने पर भी ईमान लाने वाले नहीं है अपने हरदर्मी की वजह से, दूसरे अल्लाह ताला के हिकमत के खिलाफ है कि किसी को इस तरह किताब दे दी जाए रसूल के बगैर। दूसरा उनका मुतालबा यह था कि हमारे ऊपर कोई फरिश्ता नाजिल किया जाए। वकालू लौला उन्ज़िल अलैहि मलक। अब इसके दो मतलब हैं, एक मतलब यह है, दोनों किस्म के उनके मुतालबात थे। एक मुतालबा तो यह था कि हमें इंसान क्यों पैगंबर बना के भेजा जा रहा है, हमारे जैसा इंसान जो खाता है पीता है चलता है फिरता है, तो कोई फरिश्ता आता जो हमें पैगंबर बनकर आता तो हमें अल्लाह का पैगाम पहुंचाता। दूसरा बाज उनमें से ये कहते थे कि इन रसूल के साथ कोई फरिश्ता आता। क्या एक रिवायत में आता है कि किसी ने मुतालबा किया था कि ठीक है हम आपकी बात मान लेंगे लेकिन बशर्ते कि आप चार फरिश्ते हों जो आए और आकर हमको बताएं कि ये वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं। तो दोनों बातों का यहां जवाब दे गया है कि कुरान क्यों एक फरिश्ते पर नाजिल नहीं हुआ, फरिश्ते को क्यों रसूल बनाकर नहीं भेजा गया, या फरिश्तों को तुम्हारे सामने तस्दीक करा करके क्यों नहीं भेजा, तस्दीक करने के लिए क्यों नहीं भेजा गया। तो उसके दो जवाब दिए अल्लाह तबारक व तआला ने। जवाब यह है कि पहले तो ये जरा सोचो कि फरिश्ता अगर आए तो अपनी असली शक्ल में आए या इंसान की शक्ल में आए। अगर फरिश्ता अपनी असल शक्ल में आता है तो इनके अंदर ताकत नहीं है कि उसको देख सके, क्योंकि फरिश्ते की जो हैत अल्लाह ताला ने बनाई है वो इंसानों के लिए एक ऐसी शक्ल है कि जिसको देखकर इंसान डर जाए। यहां तक कि खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम असली फरिश्ते की सूरत में जाहिर हुए तो आप पर गशी तारी होने लगी। तो फरिश्ते को इंसान के अंदर फरिश्ते को अपनी असल सूरत में देखने की ताकत ही नहीं है। इसलिए फरमाते हैं वलौ अंजलना मलकल लकुदियल अमर। और अगर हम फरिश्ते को नाजिल करते तो मामला ही तमाम हो जाता। मामला तमाम होने के दो मतलब हैं, एक मतलब तो ये कि ये उनको देखकर बर्दाश्त ही ना कर सकते और ख़त्म हो जाते ये सब जब असली शक्ल में देखे थे तो। और दूसरी वजह यह है मामले काम तमाम हो जाने की कि अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि जब कोई काफिर किसी मौजज़े का मुतालबा करता है और उस मौजज़े को उसके मुतालबे के मुताबिक दिखा दिया जाता है तो और फिर भी वो इनकार पर जमा रहे या कुफर पर जमा रहे तो फिर अल्लाह ताला उसको हलाक ही कर देते हैं। पिछले कौमों में यही होता रहा है, आद में समूद में नूह अलैहिस्सलाम के कौम में मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में कि जब उनके मुंह मांगे मौजज़ात दिखा दिए गए और फिर भी वो ईमान न लाए तो फिर उनको मोहलत नहीं मिली, फिर उनको अजाब ही में गिरफ्तार कर लिया गया। तो पहली बात लकुजियल अम्र के अंदर दोनों बातें दाखिल हैं, एक तो इनके अंदर ताकत नहीं है देखने की, ये उसको देखकर मर जाएंगे और सुम्मला युंदरून फिर मोहलत ही नहीं मिलेगी। और दूसरा ये कि हमारी सुन्नत ये है कि मौजज़ा देखने के बाद यानी वो मौजज़ा जो इनका मुंह मांगा मौजज़ा हो उसके बाद भी अगर इस शक्ल में लाया जाए फरिश्ते को ताकि उसको बर्दाश्त कर सकें तो फिर वही सवाल खड़ा हो जाएगा कि ये तो इंसान है उसको फरिश्ता हम कैसे समझे रसूल कैसे माने। तो वलौ जालना हु मलकन, और अगर हम उनको फरिश्ता बनाकर भेजें यानी इंसानी शक्ल में तो लजालना हु रजुलन, तो हम उन्हें उसे इंसान ही की शक्ल में भेजने पर मजबूर होंगे, क्योंकि इनके अंदर ताकत ही नहीं देखने की असल फरिश्ते को, तो वो इंसानी शक्ल में आएगा, एक मर्द की शक्ल में आएगा। बल लबसना अलैहिम मा यलबसून, और उस सूरत में हम उन्हें उसी शोबे में डाल देंगे जिसमें आज मुब्तला है, कि इंसान है ये, तो उसको फरिश्ता मानेंगे ही नहीं और कहेंगे, जैसे अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि ये हम जैसे इंसान है लिहाजा हम इनको कैसे माने, तो उस वक्त भी ये कहेंगे लबसना अलैहिम मा यलबसून। लिहाजा ये इनका मुतालबा किसी भी सूरत काबिल अमल नहीं है कि फरिश्ता भेजा जाए, अल्लाह ताला की सुन्नत के भी खिलाफ है। दूसरी बात यह भी है इसमें कि जो भी कहा गया कि अगर हमने फरिश्ता हम नाजिल करें अपनी असल सूरत में तो लकुदी अल अमर, काम तमाम ही हो जाए। इसके दो माना तो मैंने अभी अर्ज किए, तीसरे माना इसमें यह भी मुमकिन है और बाद मुफस्सिरीन ने उसका जिक्र किया है कि अगर बिल्फर्ज फरिश्ता आता है, और फरिश्ता ऐसी चीज़ है कि जिसको न भूख लगती है न प्यास लगती है न कोई नफसानी ख्वाहिशात उसके अंदर पैदा होती हैं, और इनको देखता है कि ये कोई हराम खा रहे हैं और उनको मना करता है, तो उसके जवाब में उनको यही कहना था कि भाई तुम हमें कैसे मना करते हो, तुम्हें तो न भूख लगती है न प्यास लगती है न तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश पैदा होती है, तो तुम हमें ये क्या सिखाने आ गए, तुम्हें अगर भूख लगती प्यास लगती तुम्हारे दिल में ख्वाहिशात पैदा होती तुम्हारी इंसानी हाजतें होती तो फिर बेशक हम समझते हैं कि भाई ये तुम जो हमें हुक्म दे रहे हो ये हमारी फितरत के ऐन मुताबिक है। लेकिन फरिश्ता अगर आता तो वो कहता कि ये तुम, बल्कि फरिश्ता जो है हो सकता है किसी मुबाह चीज़ के बारे में भी ये कह देता कि तुम गलत कर रहे हो, तो इसलिए उसको कोई पता ही नहीं था कि इसके अंदर इसकी बाकी ज़रूरत है, इसकी बाकी हाजत है, तो पता ही नहीं होता, तो इसलिए वो इतनी सख्तियाँ करता तुम्हारे ऊपर कि लकुज़ अल अमर, के काम तमाम ही हो जाता तुम्हारा। तो ये सारी वजूह हैं जिसकी बिना पर हमने कोई फरिश्ता नाजिल नहीं किया। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि ये आपके दिल में या सहाबे किराम के दिल में जो ख्याल पैदा हो रहा है कि भाई इनके मुंह मांगे मौजज़ात दिखा दिए जाएँ, एक हुज्जत तमाम हो जाए, ये कम अज़ कम हो सकता है कोई इनमें से ईमान ले आए, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, वलक़द इस्तुज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक, आप परवाह ना करें क्योंकि दरहक़ीक़त ये तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया गया है, मजाक उड़ाया गया है, और फिर ये हुआ कि जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, जिस चीज़ का मजाक उड़ाया था उसी ने उनको आ घेरा, पहाका बिल्लज़ीन सख़ीरू मिन्हुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था उनको उसी चीज़ ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे, तो आप इनकी फिक्र में न पड़े, जिस तरह पहले रसूलों ने बर्दाश्त किया उस तरह आप भी बर्दाश्त करते रहें, और अलबत्ता इनसे ये बात कह दो कि कुल सीरू फिल अर्थ, ज़रा ज़मीन पर मैं चल फिर कर देखो, ज़रा चलो सुमन ज़रू फिर देखो, कई फ़काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, जिन लोगों ने रसूलों को झुठलाया था और इसी किस्म के एतराज़ात किए थे, इसी किस्म के मुतालबे किए थे जैसे तुम कर रहे हो, तो उनका अंजाम क्या हुआ, क्योंकि अहले अरब जो हैं वो ख़ास तौर पर समूद की बस्तियों से गुज़रते थे, जब तिजारत के लिए शाम जाते थे तो समूद की बस्तियाँ रास्ते में पड़ती थीं, उनको ये देखा करते थे कि जिस तरह खंडर बने हुए हैं, पूरी की पूरी कौम हलाक हो गई, और इसी तरह बाज़ औक़ात यमन के अंदर इनका जाना होता था तो उस यमन के अंदर भी वो हज़रत आद कौम आद की का अंजाम देखा करते थे, शाम जाना होता था तो लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियों को देखते थे कि किस तरह तबाह हुई, तो भाई वहाँ चल के देखो उनके साथ क्या मामला हुआ, अगर तुम भी उसी रबिश पर कार बंद रहोगे जिस रबिश पर वो कौमें थीं, तो फिर तुम्हारा अंदाज भी यही होना है।
वाखरु दावाना। www.दसकुरान.com